والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں شرعی مسائل کے حل بیان کیے جاتے ہیں ابتدا میں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج دار الافتاء اہل سنت سے مولانا جمیل مطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور آئیے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
میری کپڑے کی دکان ہے، پھر میں ریٹ بتاتا ہوں بیچنے کا لے کے آیا ہوں تو کسٹمر جو ہے نا وہ نہیں مانتا، بولتا آپ جھوٹ بولتے ہو، اگر پھر میں مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں ایسا ہو کر لایا ہوں تو زیادہ بتانا پڑتا ہے، اس کے معاملات بتا دیں مہربانی۔
یعنی ان کے سچ بولنے پر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ریٹ صحیح نہیں بتا رہے، تو لوگوں کا جو گمان ہے اس کو پھر یہ سچا ثابت کر دیتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی گاہک کو آپ کا سودا سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے جو ریٹ بتایا ہے اور اپنی قیمت خرید اگر وہ پوچھتا اور آپ اس کو بتا رہے ہیں قیمت خرید، تو قیمت خرید پھر درست بتانا ضروری ہے۔
صحیح،
اگر آپ نے قیمت خرید زیادہ بتائی اور اس پر پھر آپ نے نفع رکھا تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اولاً اگر کسی کسٹمر کو آپ کے سچ کہنے پر یقین نہیں آ رہا تو آپ اس کو یقین دلانے کے لیے اپنے سچ کو جھوٹ میں کیوں تبدیل کر لیتے ہیں؟
صحیح،
اور جھوٹ کے ذریعے سودا بک جائے گا لیکن احادیث کریمہ کی روشنی میں پھر وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص آپ کو جھوٹ پر اکسا رہا ہو، جیسے کہ آپ کی سوال کی کنڈیشن سے یہ سب ظاہر ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو سودا نہیں بنے گا، جھوٹ بولوں گا تو سودا ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے جھوٹ بولنے کی شرن اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے سچ پہ قائم رہیں، جو آپ کی قیمت خرید کم ہے آپ اسی قیمت خرید پر برقرار رہیں، اگر اس کو سودا سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آنے کی صورت میں اس کے لیے بھی یعنی ہزاروں دکانیں ہیں اور اسی طریقے کے آپ کے لیے بھی ہزاروں گاہک بہت مل جائیں گے انشاءاللہ۔
تو کوشش کی جائے کہ سچ پر ہی قائم رہیں، غلط بیانی آپ بھی نہ کریں اور کسی سے مجبور ہو کر بھی نہ کریں، کیونکہ ایسے صورت میں اگلا آگے سوئچ کر جائے گا، دوسری دکان پر چلا جائے گا، جانے دیجئے۔ آپ اپنا توکل مضبوط رکھیے، سچ کا ساتھ دیجئے، سچے رہیے، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ مزید کال،
قسطوں پر گاڑی لینا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، لے سکتے یا نہیں لے سکتے؟
دیکھیں، نارمل اگر کسی شخص سے ذاتی طور پر یہ اس کی گاڑی کو قسطوں پر لے رہے ہیں تو عمومی اعتبار سے اتنا تو ہے کہ نقد کے مقابلے میں جو بیچنے والا ہوگا وہ قیمت زیادہ رکھے گا۔ اتنی بات کو کلیئر کر لیجئے ذہن میں کہ نقد قیمت یہ ہوگی اور ادھار میں قیمت کچھ زیادہ ہوگی، تو فریقین جس کسی بھی ریٹ پر ایگری ہو گئے تو اس پر سودا منعقد ہو جاتا ہے۔ اب یعنی فقط یہ چیز جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہے نا کہ نقد یہ جو ہے وہ 8 لاکھ کی تھی اور ادھار میں 10 لاکھ کی ہو گئی، تو یہ 2 لاکھ کہیں سود تو نہیں ہے؟ تو 8 لاکھ بھی اسی گاڑی کی قیمت تھی، وہ 10 لاکھ روپے بھی اسی گاڑی کی قیمت ہے، تو اس لیے یہ مزید 9 اور 10 جو 2 لاکھ روپے مزید بڑھا دیے گئے تو یہ سود نہیں ہے، سود کی جو تعریف شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہے اس کے تحت یہ داخل نہیں ہوتا۔ البتہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ وقت پر قسط ادا نہ کرنے کی صورت میں
جی
کیا جرمانہ لگانے کی شرط ہے، پینلٹی ہے، کہ آپ نے اگر وقت 10 تاریخ تک آپ نے قسطیں ادا کر دینی ہیں، جو بھی 20,000 25,000 جو بھی قسط طے ہوئی ہوگی، अगर आप लेट करेंगे तो आपको पर डे 500 रुपए के हिसाब से और ज्यादा पैसे देने होंगे। तो अगर ये पेनल्टी की शर्त लगाई गई है, जुर्माना जिसको कहा जाता है, तो फिर इस खिलाफ शरा शर्त के लगने की वजह से इस तरह किस्तों पर खरीदारी का अमल नाजायज होगा।
ठीक,
अब ये तो नॉर्मल मामला था। अच्छा, बैंकों के जरिए जो गाड़ियां किस्तों पर ली जा रही होती हैं, तो इनमें गैर शरई उमूर जो है ना वो ज्यादा पाए जाते हैं। मसलन पेनल्टी की शर्त के बगैर कोई भी बैंक इनको गाड़ी किस्तों पर नहीं देगा। फिर एक खराबी और उसमें आ जाती है कि बैंक इस गाड़ी को उस वक्त तक फरोख नहीं करता जब तक के इसकी तमाम तर किस्तें मुकम्मल ना हो जाएं, और इन अक्तात को वो रेंट का नाम देते हैं, ये किराया है। अब यहाँ एक खराबी ये मजीद लाजिम आ जाती है कि किराया यानी जिसको इजारा कहा जाता है लीजिंग, तो इजारे को और सेलिंग परचेजिंग को यहाँ पर जमा किया जा रहा है। खरीदो फरोख और इजारा, ये दो अलग अलग सौदे और मुआहदे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, यानी शर्त लगा दी जाती है कि हम आपकी ये गाड़ी किराए पर लेंगे, लेकिन आपको बिल आखिर ये गाड़ी हमें आखिर में बेचनी होगी। बैंक इस शर्त को कबूल कर रहा होता है। तो एक सौदे के अंदर दूसरे सौदे को इंटीग्रेट कर लेना और मशरूत कर देना, ये नाजायज। और अहादीस करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफका फी सफका, एक सौदे में दूसरे सौदे को मशरूत करने से मना फरमाया है। तो इस बिना पर मजीद ये नाजायज होने की एक वजह पे इंश्योरेंस गाड़ी में इसकी भी शर्त लागू होती है। तो इस तरह की कई खराबियां आ जाती हैं किस्तों पर गाड़ी लेने के हवाले से। अगर इन तमाम तर और इस जैसी दीगर गैर शरई शराइत से अगर सौदा बिल्कुल पाक साफ हो, सिर्फ बस ये फर्क आ रहा है कि नकद 8 लाख की होगी और उधार में 10 लाख की होगी, और पर मंथ आपको इतनी इतनी किस्तें देनी होंगी, किसी किस्म का जुर्माना नहीं, किसी किस्म की गैर शरई शराइत इस सौदे में नहीं पाई जा रही हो, तो फिर इस सूरत में किस्तों पर खरीदो फरोख्त की बिल्कुल शरण इजाजत है।
ठीक है जी, बहुत तफसीली जवाब आ गया। तो देख लीजिए कि अगर किस्तों पर खरीदो फरोख का मामला कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं और किन शराइत के साथ है। जो शराइत है, फिर मजीद अगर कुछ शराइत आपके सामने और आती हैं तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सामने उनको रखा जाए या मुफ्तियाने अहले सुन्नत से उसकी रहनुमाई ली जाए, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल दुरुस्त रहनुमाई की सूरत में फिर अमल किया जा सकता है। छोड़ने का कहा जाए तो छोड़ दिया जाए, और अगर ये कहा जाए कि ये चीज ओके है तो फिर उसको कर लिया जाए, दुरुस्त रहेगा। मजीद कॉल की तरफ बढ़ते हैं।
मैं 1.5 साल से इधर रावलपिंडी में, मैं और मेरी फैमिली शिफ्ट हो गए हैं। हमारा घर जो है अबाई बोर लाहौर में है, और लाहौर में घर जो है वो अभी किराए पर हमने दिया हुआ, तो एक फ्लोर जो है वो किराए पर है और एक फ्लोर जो है वो हमारे पास है। तो जब कभी मुझे दफ्तर लाहौर जाना पड़े, दो हफ्तों बाद, तीन हफ्तों बाद, तो मुझे उधर लाहौर में अपने घर में कसर नमाज पढ़नी होगी या पूरी नमाज पढ़नी होगी?
ठीक है जी,
लाहौर शरीफ दाता दरबार यहाँ पे मौजूद है, मरकजुल औलिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ इनकी जाय पैदाइश है, इनके सवाल से जाहिर है। तो लाहौर मरकजुल औलिया इनका वतन असली है। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने पिंडी में 1.5 साल हुआ है, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं। अब इनका सवाल ये है कि जब मैं लाहौर आऊंगा तो क्या मुझे कसर करनी होगी या नहीं करनी होगी?
15 दिन के लिए मैं आ रहा हूँ, हफ्ते 15 दिन के लिए आ रहा हूँ, तो फिर क्या सूरत बने?
अब देखें, वतन असली जो इनका लाहौर है ना, वतन असली खत्म करने की जो सूरत होती है वो ये कि ये तय कर लें कि मैं पिंडी शिफ्ट हो चुका हूँ, यहीं पे मकान ले लिया, यहीं पे अब मुस्तकिल रिहाइश अब यहीं होगी। रहा मामला लाहौर का, तो लाहौर से बिल्कुल तरके तवत्तुन, यानी अब यहाँ पर वापसी नहीं आना, इसको दोबारा से अपना वतन और अपना जो रिहाइश का अब लाहौर नहीं होगी, तो बिल्कुल तर्क कर दी रिहाइश। और जो इनका साजो सामान मिल्कियत वगैरह हो, तो फिर अगर कोई उसको बेच कर खत्म करके फिर वहां पहुंचता है किसी दूसरे शहर में, तो फिर इस सूरत में उसका पिछला जो वतन असली होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इनके सवाल से जाहिर यह है कि इन्होंने अपना लाहौर में अपने घर को बाकी रखा हुआ है, छुट्टी गुजारने के हवाले से ये वहाँ पर आते हैं, इनका आबाई शहर वही है, तो अगर इनका लाहौर से रिहाइश रखने का सिलसिला बिल्कुलिया मुनकते नहीं हुआ, तो फिर इनका वतन असली वो बाकी है।
सही।
जब बाकी है तो लाहौर में चाहे वो 1 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, जितने दिनों के लिए भी आएंगे, तो ये मुकम्मल ही नमाज पढ़ेंगे। अब रहा मामला पिंडी का, पिंडी में 1.5 साल इनको हुआ है, तो ये पिंडी में इनकी जो रिहाइश है ये मुस्तकिल पैमाने पर पिंडी में भी कोई मकान खरीद लिया और वहीं रहने की भी नियत कर ली है
जी,
या सिर्फ दफ्तरी मामला की बिना पर कि इनकी जॉब चूंकि पिंडी में इसलिए लाहौर से पिंडी आना जाना दुश्वार है, तो हफ्ते में 2 हफ्ते में लाहौर चक्कर लगा लेते हैं और रिहाइश इनकी पिंडी में ही है आरजी। अगर वो आरजी है तो फिर उसके हकामात अलग होंगे, फिर पिंडी का वतन असली होना ये नहीं बनेगा, फिर वो वतन इकामत की सूरत बनेगी। वतन इकामत का मतलब ये होता है किसी जगह जो आपके शहर से 92 किलोमीटर की मुसाफत पर दूर है, वहाँ अगर आप 15 दिन की नियत से जाते हैं तो आप पूरी पूरी नमाज पढ़ेंगे, और अगर 15 दिन से कम की नियत से जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे कसर करेंगे। तो साहिल मोहतरम से गुजारिश ये है कि पिंडी में जो आपकी रिहाइश है उसके बारे में मजीद वजाहत कर दें, किस हैसियत से है। फिर दूसरा ये कि लाहौर में आपने अपनी रिहाइश को खत्म किया है नहीं किया, तो मेरा मशवरा यह है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर दाता दरबार के कुर्ब जवार में ही अल्हम्दुलिल्लाह बरकत लूट भी रहा है और लुटा भी रहा है, तो आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मरकजुल औलिया लाहौर में आप रुजू करें और मुफ्ती साहिबान की बारगाह में हाजिर होकर अपना ये मसला रिहाइश के हवाले से, वतन इकामत कौन सा है, वतन असली कौन सा है, वतन सफर क्या होता है, तो चूंकि आपका ये सफर से ताल्लुक रह चुका है और रहेगा जब तक आप ये सिलसिला करेंगे, तो आपको इन अहकामात को सीखना भी जरूरी है।
बहुत सारी चीजें हम सीख रहे होते हैं और उनमें तरक्कियां कर रहे होते हैं, नए शॉर्ट कोर्सेज आ जाते हैं, कुछ नई बातें आ जाती हैं, ट्रेनिंग होती हैं, उनको हम इख्तियार करते हैं और फिर उससे ग्रेजुअली तरक्की कर रहे होते हैं। तो जब हमारी ट्रेनिंग के तहत या किसी भी एतबार से हमें तरक्की मिल गई है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, अब 2 शहरों के मुकीम हो गए, अब हमारी नमाजों के क्या मसले होंगे, हमने किस तरह से इनकी अदायगी करनी होगी, इसको भी सीखना चाहिए। इसके लिए भी थोड़ा सा वक्त दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में दे दें। हम अगर थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो डॉक्टर हमें देखता है और पहली सूरत में हमें कोई खास दवा रिकमेंड नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि वो हमें एक टेस्ट लिखकर दे देता है कि ये टेस्ट है ये करवा लें, और ये करवाने के बाद जब आएंगे फिर मजीद रिपोर्ट्स देखकर आपकी तशखीस की जाएगी और आपको जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाएंगी। तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है, ये बहुत अच्छा किया कि अच्छी नौयत इनके सामने आ जाएगी तो सही दवा भी दे सकेंगे। तो शरी मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए, मसाइल सीखने हैं तो अगर पहली मरतबा में हम अपनी सही तफसीलात नहीं बता पाए, अगली मरतबा में मुकम्मल तफसीलात पेश करें ताकि दुरुस्त हल मिल जाए और ऐसा हल हो जो हमारे लिए मुमकिनुल अमल हो, उस पर अमल भी हम कर सकें इंशाल्लाह। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें भी ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आराम से और एहसान अंदाज से मसला समझ आ जाएगा। मजीद का
मेरा मुफ्ती साहब सवाल ये है कि मैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत गया था मसाइल सीखने के लिए तलाक के हवाले से, तो ये बताइए कि जैसे वहाँ पे बातचीत हो रही थी, अगर मैंने कोई ऐसा अल्फाज बोल दिया हो कि मैं सीखने के हलवा से गया हूँ तो निकाह में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यानी कि दी दे दूंगा इस तरीके से?
ठीक है, मुज़ाकरा तलाक को दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में डिस्कस करते वक्त फिर वही अल्फाज कहे जो तलाक के वक्त कहे थे, तो क्या उससे मजीद कुछ?
अब ये शायद इनका सवाल से आइडिया ये लग रहा है कि जैसे बाद हमारे इस्लामी भाई हैं जो शरी मसाइल का जोश जज्बा रखते हैं सीखने का, तो इस हवाले से ये पूछने के लिए गए हैं, और फिर उस दौरान मिसालों के जरिए भी सवाल किया जाता है कि अच्छा अगर कोई यूं कर दे तो फिर क्या हुक्म होता है, यूं करे तो क्या हुक्म होता है। तो अगर फर्जी सवाल हुआ, फर्जी सवाल तो बहुत सारी सूरत है फर्ज की जा सकती हैं, कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को यूं कहे कि मैंने तुम्हें तलाक दी,
ठीक है,
तो इसका क्या हुक्म है? अगर कोई ये कहे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तो इसका क्या हुक्म है? बजाय बोलने में तो ये जुमला आ रहा है
जी
कि मैंने तुम्हें तलाक दी, मैं तुमको तलाक दे दूंगा, लेकिन ये सवाल करने वाला पूछने वाला एक सवाल करके उसका जवाब मालूम करना चाह रहा है, और ये फर्जी सवाल कि अगर किसी ने यूं कहा, अगर कोई यूं अपनी बीवी से झगड़े में यूं बोल देता है, तो इस तरह कहने और सवाल करने से तो तलाक वाके नहीं होती। अगर यूं देखा जाए तो कुतुब फिक भरी पड़ी हैं और उसमें कई कई जगहों पे ये आता है कि इदा काल रजुल ज़ौजा अंति तालिक, तो अब उसमें ये कि अगर शोहर अपनी बीवी से कहता है कि तुझे तलाक है तो अब ये मिसाल अगर कोई पढ़ रहा होता है, कोई उस्ताद अपने मौलिम अपने तलबा कोई मसाइल सिखा रहा होता है, बता रहा होता है, तो उसमें बकायदा वो मुतकल्लिमाना अंदाज में भी जुमले होते हैं, और लेकिन उस वक्त चूंकि तलबा को सिखाना मकसूद है, मसाइल बताना मकसूद है, तो इस सूरत में तलाक वाके नहीं होती। बाकी ये है कि इनको किसी किस्म की कोई शायद कोई उलझन महसूस हो रही है, किसी किस्म के वसवसे में ये आ रहे हैं, लग ऐसा रहा है, तो जब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आप गए हैं तो मेरा मशवरा यह है कि इस मसले को भी दोबारा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से डिस्कस कर लीजिए।
ठीक है, मुख्तसर जब ये सवाल हुआ तो एक बात जो जिस तरह मैंने भी अर्ज की कि अगर ये सिचुएशन पहले हो चुकी है, फर्जी सवाल नहीं है, मुजाकरा तलाक पहले हो चुका, यानी पहले घर में कोई मामला हो गया और उसके बाद अब बंदा अपने मसले के हल के लिए के जो अल्फाज मैंने कहे थे घर में क्या उससे तलाक हो गई या नहीं, वो मुफ्ती साहब के पास आकर मुफ्ती साहब के सामने भी दोहरा देता है कि मैंने अपनी बीवी से ये अल्फाज कहे थे, तो क्या ऐसी सूरत में भी तलाक पर असर होगा?
अच्छा, ये भी होता है कि कोई शख्स, जन जो आपका सवाल है उसी को थोड़ा सा वाजे करके बयान करता हूँ, जैसे कोई शख्स अब मियां बीवी में झगड़ा होने की बिना पर तलाक वाके कर दी उसने ना, अब वो एक तलाक वाके बिलफर एक तलाक उसने दे दी है और अब वो मुफ्ती साहब के पास आके पूछना चाहता है कि अब मेरा अपनी बीवी के साथ दोबारा से मियां बीवी की हैसियत से रहने और इस रिश्ते को आगे चलाने की क्या सूरत बन सकती है, तो मुफ्ती साहब उससे पूछेंगे कि भाई आपने तलाक किस तरह दी थी, क्योंकि बसा औकात यूं भी होता है कि आदमी गलत फहमी में तलाक समझ लेता है लेकिन तलाक नहीं हुई होती, वो तलाक हुई होती है और समझता है कि नहीं हुई, तो इसलिए अल्फाज अगर मुफ्ती साहब ने पूछे कि आप ये बताएं कि आपने क्या अल्फाज कहे, अब शोहर ये कहता है कि मैंने ये कहा था कि मैंने तुम्हें तलाक दी, अब मुफ्ती साहब उसको जवाब देते हैं कि इससे एक तलाक पड़ गई। अब अगर ये शायद अगर साहिल के जहन में ये सवाल आया कि एक तलाक तो घर पे देकर आया था, दूसरी मुफ्ती साहब के सामने मैंने जो बताया है तो क्या इससे कहीं दूसरी तलाक तो नहीं पड़ गई, तो जब आपसे किसी ने सवाल किया कि आपने तलाक के अल्फाज किस तरह कहे थे और आप उसकी खबर दे रहे हैं कि मैंने इस तरह कहे थे, तो इस खबर देने से तलाक वाके नहीं होती। इस खास सिचुएशन में कि किसी ने सवाल पूछा कि आपने अल्फाज तलाक कैसे कहे, फिर आपने बताया कि मैंने यूं कहे थे, तो इस तरह खबर देने पर किसी के पूछने पर खबर देने की सूरत में तलाक वाके नहीं होती। हाँ, अगर किसी आदमी ने आकर वैसे ही बगैर किसी उसमें आके अपनी बीवी को डायरेक्ट यूं कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, हालांकि उसने तलाक नहीं दी थी, अब जो बीवी को अगर खबर देगा ना कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ तो इससे तलाक हो जाएगी। लेकिन मुफ्ती साहब के पूछने पर कि आपने क्या अल्फाज कहे थे, किस तरह कहे थे, तो वो आप डिफाइन करेंगे कि मैंने यूं कहे थे, तो इस तरह बताने से नहीं होगा। और दीगर जावियों से खबर देने के कुछ अलग अहकाम है कि बाज़ औक़ात खबर देने से भी तलाक वाके हो जाती है, लेकिन खास किसी के पूछने पर अल्फाज तलाक किस तरह कहे थे इसकी आप वजाहत कर रहे हैं तो इससे तलाक नहीं होती।
सवाल जो मैसेजेस पर आए हुए हैं उनको भी शामिल करते हैं। एक सवाल यह है कि क्या दौरान इद्दत औरत नहा सकती है?
दौरान इद्दत औरत का गुसल करना नजाफत वगैरह की बिना पर या किसी और उजूर के बिना पर ये बिलाशुबा जायज है, बल्कि अगर इसको नापाकी के अयाम से फरागत हुई है तो अब तो गुसल करना इसके लिए फर्ज हो जाएगा।
ये सवाल है कि जुमे के बाद वाली जो चार सुन्नतें हैं उनकी नियत किस तरह की जाएगी?
जुमातुल मुबारक में अवामुन नास में ये खासकर मर्दों में थोड़ी ज्यादा, चूंकि मर्द हजरात ही जुमा पढ़ते हैं, खवातीन तो जोहर पढ़ रही होती हैं, तो इनमें एक सवाल ये जहन में बैठ जाता है इनके कि जुमे के दिन जो हम दो रकात इमाम साहब के साथ पढ़ते हैं वो तो जुमा है, तो बकिया जो सुन्नतें होती हैं वो जुमे की होती हैं या जोहर की होती हैं? तो ये अवामी एक उलझन है, तो जहन में रख लीजिए जुमातुल मुबारक के दिन जो मुकीम और तंदुरुस्त जिसके ऊपर जुमे के शराइत पाए जाने की वजह से जुमा फर्ज होता है, तो वो जो जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं वो तमाम तर रकातें जो 14 रकात हैं, तो ये तमाम की तमाम रकातें चाहे वो जुमे के फर्ज से पहले की चार सुन्नतें हों या बाद की चार सुन्नतें फिर दो सुन्नत और फिर दो नफिल होते हैं, ये तमाम के तमाम जुमातुल मुबारक की नीयत से ही पढ़े जाते हैं।
ठीक है, नमाज का रुकू या सजदा करना भूल गए तो अब क्या हुक्म है?
सजदा नमाज का फर्ज है।
ठीक है,
और रुकू भी फर्ज है, इन दोनों में से कोई एक भी अगर छूट गया तो इस तरह से नमाज मुकम्मल अपने तौर पे कर ली, सलाम फेर दिया, अब उसको यानी नमाज से मुकम्मल फारिग होने के बाद अब इसके दिल में आता है और ये यकीनी सूरत है कि इसने सजदा एक छोड़ दिया था या इसने रुकू एक छोड़ दिया था, तो फर्ज छोड़ने की बिना पर वो नमाज नहीं हुई, उस नमाज को फिर दोबारा से नए सिरे से पढ़ेंगे।
जी कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम आसाम है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हक महर जो शरह मोहम्मदी होता है वो कितना होता है, ये आप मुझे बता देंगे।
ठीक है, हक महर शरह मोहम्मदी कितना है?
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहादीस करीमा में मेहर के कम से कम मिकदार को बयान किया गया है और वो कम से कम मेहर की मिकदार है 10 दिरहम। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जो करेंसी थी चांदी के सिक्के होते थे उनको दिरहम कहा जाता था और जो सोने के सिक्के होते थे इनको दीनार कहा जाता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 दिरहम को एक मिकदार बयान फरमाया कि ये कम से कम मेहर है, इससे कम मेहर नहीं हो सकता। अब जो उस जमाने रिसालत में 10 दिरहमों को जब हम वजन करते हैं और आज हमारे ग्रामों का हिसाब है तो इस ग्रामों में चांदी कितनी बनती है, तो वो बनती है 2 तोला 7.5 माशे चांदी, 2 तोला 7.5 माशे चांदी। और इसको जब हम ग्रामों में लेकर आते हैं तो ये तकरीबन 31 ग्राम के करीब करीब ये वजन बनता है, तो ये कम से कम मेहर की मिकदार है। अब इससे ऊपर आप चाहे जितना चाहे मुकरर कर सकते हैं, मेहर हस्बे इस्तेताअत जितना शोहर बआसानी दे सके, तो ये शोहर के ऊपर लाजिम होता है, तो जितना शोहर बआसानी दे सके, तो औरत का मेहर मिसल के करीब करीब या मेहर मिसल जितना है उतना मेहर मुकरर होना चाहिए, और मेहर मिसल से कम भी मेहर मुकरर नहीं हो और इतना ज्यादा भी मेहर मुकरर ना किया जाए कि शोहर की देने की ताकत से वो ज्यादा हो। और अहादीस करीमा में भी उस निकाह को बरकत वाला कहा गया है कि जो निकाह कम खर्च होने की सूरत में किया जाता है। कम खर्च का मतलब ये कि बहुत बड़ी मिकदार में मेहर को मुकरर ना किया जाए, अगरचे जितना भी आप मेहर मुकरर कर लें और शोहर भी उसके देने पे एग्री हो तो वो मेहर मुकरर हो जाएगा। बिल फर्ज कोई 10 लाख रुपए भी मेहर मुकरर कर ले और शोहर से इजाब कबूल 10 लाख रुपए मेहर पे हो जाए और वो भी एग्री है तो 10 लाख रुपए ही देना उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा, वरना कम से कम जो मेहर है वो 2 तोले 7.5 माशे चांदी, ये तोले और माशी के हिसाब से हिसाब है और ग्रामों में तकरीबन 31 ग्राम बनता है। और हालिया सोने चांदी के रेट का अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन बात खानदानों में जो है ना खालिद भाई, रिवाज ये है कि हम 1200 से ऊपर जाते ही नहीं, यानी ये अब वो 1200 रुपए कब से चल रहा है तो पता नहीं 20-25 साल से वो 1200 जब 1200 रखना दुरुस्त होगा यकीनन, लेकिन अब जबकि 1200 रुपए में तकरीबन 1 तोले के करीब करीब या 1.25 तोले अगर चांदी आ रही हो तो 2 तोले 7.5 माशे का फिगर तो अभी भी पूरा नहीं हो रहा, तो 1200, 1500, 1100 या इतने 100 इतने रुपए, लेकिन वो अगर 2 तोले 7.5 माशे की कीमत से जिस वक्त निकाह हो रहा है उसकी कीमत से अगर नीचे कम है तो इस तरह मेहर मुकर्रा करना ये दुरुस्त नहीं है। तो मेहर शरी हवाले से जो इसकी कम से कम मिकदार है वो आपको बयान कर दी, इससे ऊपर आप आपकी मर्जी है फरीकेन की, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखते हुए मेहर को मुकर्रर करना चाहिए।
ठीक है जी, किसी को अपने ताबे रखने के लिए मेहर मुकर्रर नहीं करना चाहिए, ये एक हक है और इसको दुरुस्त तरीके कार के मुताबिक रखना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक सवाल साथ में ये भी है कि अगर किसी ने मेहर मुकर्रर किया और मेहर अदा करने से पहले बीवी का इंतकाल हो गया तो मेहर के अदा करने की क्या सूरत होगी?
मेहर शोहर पे लाजिम रहा और बीवी का इंतकाल हो गया यानी उसको जीते जी ना मिल सका, तो जिस तरह किसी भी मरने वाले शख्स के जो कर्जे लोगों के ऊपर चढ़े होते हैं तो वो वसूल किए जाते हैं और उनको फिर विरासत में और जो शरी जाब्ते के मुताबिक जो जो अहकाम है उनसे गुजारा जाता है, तो इसी तरीके से जो शोहर के ऊपर वाजिबुल अदा मेहर था और अदा नहीं किया गया तो वो मेहर भी औरत के तरके में शामिल हो जाएगा। अब ये है कि औरत के अपने जहेज का सामान होगा, उसके अपने जेवरात होंगे, उसके दीगर अब कोई खातून ऐसी होंगी जिनका बैंक बैलेंस भी होगा, अकाउंट में रकमें मौजूद होंगी, कोई कारोबार भी होगा, कोई जमीनें होंगी, तो ये जितनी चीजें विरासत के अंदर आएंगी तो जो मेहर अदा नहीं किया गया था उसको भी विरासत में इंक्लूड किया जाएगा।
ठीक है, ये जो शोहर है इनके ये मकरूज ठहरेंगे कि आप इतने के औरत के कर्जदार रहे। ठीक है, मुझसे एक सवाल ये भी है कि इसी से रिलेट है तो मैंने सोचा कि आज क्या तर्ज कर दूं। इंतकाल हो जाने की सूरत में चाहे शोहर का हो और चाहे बीवी का हो, अगर मेहर अदा नहीं किया होता तो कहते हैं कि जनाब सिरहाने खड़े होकर या पांव की जानिब खड़े होकर, अगर अदा नहीं किया है और शोहर का इंतकाल हुआ है तो बीवी को कहा जाता है कि आप पास खड़े होकर ये कह दो कि मैंने मेहर माफ किया। इसी तरह अगर बीवी का इंतकाल हुआ होता है तो शोहर को लाया जाता है और कहा जाता है कि मेहर के माफ करने की ऐसी कोई सूरत बनाई जाए।
देखें, औरत के इंतकाल होने पर शोहर पर तो लाजिम है, अब तो उसको अदा ही अदा करना है, वो मुआफी की सूरत, औरत अब मुआफ तो कर ही नहीं सकते। रहा मामला शोहर का इंतकाल हो गया और उसका जनाजा मौजूद है, तो आम तौर पर उस वक्त औरत को लाया जाता है कि इसके अपने जो ज्यादतियां हुई इसकी तरफ से, हक तलफियां हुई, तो उनको मुआफ कर दे, उसी में लगे हाथों जो है वो मेहर में माफ करवाया जा रहा होता है। तो अब यह है कि औरत मुआफ करना चाहे तो उसको मुआफी का इख्तियार हासिल है। अब चूंकि ये जो माल था ना वो यानी शोहर के इंतकाल होने की सूरत में उस पर जो वाजिबुल अदा था, तो अब शोहर के जो दीगर अमवाल हैं उन अमवाल में से औरत का मेहर अदा किया जाएगा। तो अब औरत अपना ये जो हक है ना मेहर का, वो शोहर के तरके में से लेने की हकदार है और शोहर के दीगर वुरसा उसको अदा करेंगे। तो अगर औरत बादे वफाते शोहर भी अपना मेहर माफ करना चाहे तो कर सकती है।
ठीक है, औरत अगर मेहर माफ करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन
जबरदस्ती और जबरन इससे मेहर माफ नहीं करवाया जाएगा।
ठीक है जी, बहुत अच्छा। मजीद कॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं जी, कॉल दीजिएगा।
भाईजान, अगर कोई उम्रे की सादत के लिए जाए तो 28 दिन का उम्रा हो तो नमाज कसर पढ़नी चाहिए या मुकम्मल पढ़नी चाहिए?
ठीक है जी, जी मुफ्ती साहब, 28 दिन के पैकेज के साथ अगर बंदा जा रहा है तो नमाज की क्या सूरत हाल होगी?
28 दिन का जो पैकेज है ना, अब इसमें नॉर्मली तो यही होगा कि इनके कुछ अय्याम मक्का मुकर्रमा में होंगे, कुछ मदीना मुनव्वरा में होंगे। अब ये है कि मक्का मुकर्रमा में कितने दिन और मदीना मुनव्वरा में कितने दिन, ये इन्होंने बयान नहीं किया। तो अभी जो कारवान वाले होते हैं ना, इनके भी मुख्तलिफ अंदाज में शेड्यूल बन जाता है। कुछ पहले मक्का मुकर्रमा जाते हैं 10 दिन बिल फर्ज, फिर उसके बाद 8 दिन मदीना मुनव्वरा आ जाएंगे, फिर 18 दिन हो गए, आखिरी के 10 दिन फिर मक्का मुकर्रमा में आ जाते हैं। कोई पहले मदीना मुनव्वरा का शेड्यूल बनाता है, दरमियान में मक्का मुकर्रमा, फिर वापसी मदीना मुनव्वरा। तो कोई इब्तदाई 15 दिन मक्का मुकर्रमा, तो बकिया दिन मदीना मुनव्वरा। तो असल ये है कि आप अगर 15 दिन 15 रातें, अब ये जो फार्मूला है इन्होंने 28 दिन तो कह दिया, लेकिन इस वक्त हम इनकी वाज़े सूरत तो बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सूरत ये है कि आप मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में मुकीम कब बनेंगे। अगर आप मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं या मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, किसी भी एक जगह जाने में अगर आपको 15 दिन 15 रातें आपको वहां पर गुजारनी है, ठीक है, तो फिर आप मक्का मुकर्रमा गए तो वहां पे मुकीम। अगर आप 15 दिन 15 रहते हैं इससे ज्यादा या मदीना मुनव्वरा में रहने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर मुकीम यकमुश्त। और अगर आपके 15 दिन 15 रातें नहीं बनती, 12 दिन बनते हैं, 12 रातें बनती हैं, 8 दिन 10 दिन इतने बनते हैं दोनों मकामात पे, तो आप मक्का मुकर्रमा में भी मुसाफिर, मदीना मुनव्वरा में भी मुसाफिर रहेंगे जब तक के अपने वतन वापस ना आए।
ठीक है जी, अल्लाह करीम नजर रहमत फरमाए हरमैन तय्यबैन की बार बार बा अदब बा ज़ौक हाजिरी हमारा हमारे नादरीन का मुकद्दर फरमाए। अल्लाह अकबर। सवाल ये है कि जुमे के खुतबे के दौरान दुआ करने का क्या तरीका कार है?
दो खुतबों के दरमियान जब वक्फा होता है उस वक्त दुआ की जाए, तो उस वक्त हाथ उठा के ना करें, लबों को हिला के दुआ ना करें, दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला से जो आप दुआ मांगेंगे इंशा अल्लाह कबूल होगी।
ठीक है जी। घर में बच्चों के खिलौने होते हैं और इन खिलौनों में गुड़िया टेडी बेयर वगैरह मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो क्या इनकी मौजूदगी में कमरे में नमाज अदा करना दुरुस्त है?
उमूमी एतबार से ये जो खिलौने, इसमें चेहरा भी वाज़े होता है बाज़ों का, لیکن یہ قابل احترام نہیں سمجھے جاتے، نہ ان کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا، کبھی ادھر پڑا کبھی ادھر پڑا ہے. تو تصویر ہے، مجسمے کی صورت ہے، لیکن بطور تعظیم یہ کہیں رکھا نہیں گیا اور یہ ادھر ادھر گرتا پڑا ہوا ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟
خودکشی کرنے والا مسلمان، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے، ایصال ثواب، اسی طریقے سے دسواں، چالیسواں اور برسی وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے. خودکشی کرنا معاذ اللہ یہ اس کا اپنا ایک ذاتی ایک عمل تھا، جس طرح کوئی بے نمازی ہے گناہ گار ہے، کوئی شراب نوشی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، تو اسی طرح خودکشی بھی ایک کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آدمی مسلمان ہی ہوتا ہے، جبکہ اس نے خودکشی کے عمل کو حلال نہ جانا ہو. تو ہم یہ حسن نظر نہیں رکھیں گے کہ اس نے حرام سمجھتے ہوئے بس جذبات میں آ کے اپنا یہ کام تمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ خودکشی سے ہم سب کو مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، کہ بہت سخت وعیدیں احادیث کریمہ میں اس کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ جو اپنے آپ کو جس انداز میں قتل کرے گا، روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑ سے گرا کر، دریا میں ڈوب کر، یا آگ کے ذریعے سے، یا چھری چاقو اس طرح اسلحے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو قتل کرے گا، تو جہنم میں بھی اسی انداز میں اپنے آپ کو وہ مارتا رہے گا. دنیا اور آخرت کا فرق یہ آ جائے گا کہ دنیا میں اس نے اس طرح اقدام قتل کر کے اپنے آپ کو قتل کر دیا، موت واقع ہو گئی، اب آخرت کی طرف، برزخ کی طرف چلا گیا، لیکن قیامت کے دن یہ وہ کیفیت جو موت والی تھی نا، وہ کیفیت میں آ رہا ہوگا لیکن مرے گا نہیں، بس یہ عمل اس کا ہوتا ہی رہے گا، یہ مسلسل یہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا، اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نظر رحمت فرما دے اور اس کی بخشش فرما دے.
وضو کے نوافل کون کون سی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟
وضو کے نوافل کون کون سی نماز
سے پہلے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب پڑھ رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسی نمازیں بھی ہیں کہ جن میں وضو؟
فجر میں، فجر کی جو نماز ہے نا، فجر کی نماز کا پورا وقت اس میں نوافل نہیں پڑھ سکتے، تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے اس موقع پہ. اسی طریقے سے جو مکروہ اوقات ہیں، تین اوقات، ان میں نہیں پڑھ سکتے. خطبہ جمعہ کے وقت نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. عصر کی نماز سے پہلے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب غروب آفتاب تک نوافل نہیں پڑھ سکتے. تو اس طرح چند اوقات ہیں جن میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے.
علم دین حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ علماء اہل سنت کی کتب کی طرف مراجعہ کی جائے، کتب کو پڑھا جائے، کتابوں کو دیکھنا، اس سے بھی مسئلہ ایک اچھے انداز سے سمجھ میں آتا ہے. کتاب پڑھتے پڑھتے جو مسئلہ سیکھ رہے ہیں، اگر اس میں کچھ الجھن ہو رہی ہے تو اس کو لے کے علماء کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، انشاءاللہ عزوجل اچھی رہنمائی بھی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں احکام دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی